السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفلی روزے صیام التطوع. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. جیسے کہ ہم روزوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اور فرض روزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ تو فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزمرہ کے معمولات تھے، اور آپ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی یا امت کو بھی ترغیب دی، اور اس کا بھی اجر بہت بتایا جاتا ہے جو نفلی روزے ہوتے ہیں، اور مختلف اوقات کے مخصوص دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، جو کہ ہیں تو نفل ہی لیکن اس کا اجر بہت ہے. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارا دین ہمیں نیکی کے معاملے میں ابھارتا رہتا ہے، آگے بڑھاتے رہتا ہے، اور کیوں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آئے، ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنیں. ایک تو ہوتی ہے فکس، جو ہماری عبادت ہے، جو فرض ہے، وہ تو اینی ہاؤ ہر حال میں ہم پر لازم ہے، فرض ہے. اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایکسٹرا ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے. نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایکسٹرا، زائد، جیسے کہ سورہ انفال ہے، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ ایکسٹرا، زائد، جو فرض کے علاوہ ہے. تو بہرحال نفلی عبادت کی بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، لیکن اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ ہے اعتدال کی تعلیم، اور اعتدال میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کا اپنی جان پر بھی حق ہے. جیسے کہ ہو سکتا ہے آپ کو شاید پچھلے کچھ لیکچرز میں آپ نے سنا ہو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی آپس میں مواخات تھی. ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بعد میں آپ ان کے ابو دردہ کے گھر آتے ہیں، تو ان کی بیوی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی بہت ہی عجیب حلیے میں بیٹھی ہیں، اور تھوڑی سی لگتا ہے کہ سستی پر مائل ہیں. تو انہوں نے پوچھا ابو دردہ کے بارے میں کہ ابو دردہ کہاں ہیں اور کیا حال ہیں. تو کہنے لگیں کہ ابو دردہ کا کیا پوچھنا، وہ تو دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں. تو وہ سمجھ گئے بات کہ شوہر بیوی کا شاید حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس بنا پر بیوی کچھ بیزار سی لگتی ہیں. تو وہ وہیں رک گئے، ابو دردہ کا انتظار کرنے لگے. جب وہ صحابی آتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ، تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں. تو ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں تو روزے سے ہوں. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب تک آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. تو بہرحال پھر وہ ان کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں، چونکہ نفل روزہ ہوتا ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں. اب جب ساتھ میں کھانا کھا لیتے ہیں، رات میں پھر سوتے ہیں، ابو دردہ رضی اللہ عنہ بار بار اٹھتے ہیں، یعنی ابھی آدھی رات بھی نہیں گزرتی ہے کہ شروع رات میں ہی اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کو روکتے ہیں، پھر کہتے ہیں ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی تھوڑی دیر سوئے رہو. پھر اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر ابھی لیٹے رہو، ابھی بہت وقت باقی ہے. پھر جب تھوڑا وقت باقی رہتا ہے فجر کے لیے، یعنی ایک تہائی رات جو گزر جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں تہجد. پھر دونوں مل کر تہجد پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لاتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا معاملہ ہوا، ابو دردہ یہ اور یہ کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ اپنے جسم کا بھی انسان پر حق ہے، اپنی بیوی کا بھی اس پر حق ہے، اپنے بچوں کا بھی اس پر حق ہے، یعنی سب کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بالکل درست کیا، یہ تم نے درست کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نفلی عبادت میں اتنا بھی آگے نہ بڑھے کہ اعتدال سے ہٹ جائے، اور اتنا بھی بے مہار نہ ہوں کہ بس صرف فرائض ہی ادا کرتا رہے. صرف فرض پر اکتفا کر لے اور نفل عبادتوں کو بالکل ہی چھوڑ دے، ठीक है, फ़र्ज़ का भी अगर वो एहतमाम कर लेता है तो उसके लिए काफ़ी है, लेकिन आप देखें जो दर्जात की बुलंदी है वो तो एक्स्ट्रा नेक काम करने से होगी ना। इंसान अपने तौर से, अपनी खुशी से, ये जो ततव्वो को जो कहा गया है, सियाम ततव्वो, ये क्या है दरअसल? अपने दिल की खुशी से, तौअन, खुद से दिल चाहना नेकी का, खुद से कोशिश करना। तो ये नफली इबादत का भी बहुत ज़्यादा अज्र बताया गया है कि जो अपनी दिल की खुशी से अल्लाह सुबहान तआला की खुशनुदी की खातिर कोई एक्स्ट्रा नेक काम करता है तो उस पर उसे अज्र मिलेगा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि एतदाल में रहे इंसान, गुलू इख्तियार ना करे, क्योंकि जो भी रहबानियत है वो गुलू की वजह से हुई। आपको याद होगा एक शख्स आता है और कहता है, तीन लोग आते हैं, उसमें से एक शख्स ये इरादा करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी हैं, मेरे लिए तो उतना अमल काफ़ी नहीं होगा, लिहाजा मैं अपने ऊपर लाजिम करता हूँ कि ज़िंदगी भर रोज़े रखूँगा, कभी इफ्तार नहीं करूँगा। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात की खबर होती है तो आप फ़ौरन उन्हें बुला भेजते हैं और कहते हैं कि मैं रोज़े रखता भी हूँ, कभी नहीं भी रखता, मैंने शादी भी की है, इस तरह की ज़िंदगी भी गुजार रहा हूँ, रात में सोता भी हूँ और जागता भी हूँ। तो इस तरह से हमें एतदाल सिखाया गया है। और आपने ये भी फरमाया, देखे फ़मन रगिब अन सुन्नति फ़लैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से बेरगबती अख्तियार करे, मुँह मोड़े, वो मुझसे नहीं है। तो इससे मालूम होता है कि नफल इबादत में भी एतदाल ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ पर आपको याद होगा कि 40 दिन के या 4 महीने के रोज़े बहुत मशहूर है, जिसको विसाल के रोज़े कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के रोज़े रखे थे, लेकिन आपने फरमाया था कि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है, लेकिन आम लोगों को और सहाबा कराम को आपने मना कर दिया था कि तुम मत रखो, अपने ऊपर जुल्म ना करो। और कुछ लोग मुसलसल 4 महीने के रोज़े रखते हैं, रजब से लेकर पता नहीं कौन से 4 महीने होते हैं, उसको विसाल के रोज़े कहते हैं। तो ये भी सुन्नत से साबित नहीं है, मना किया गया है। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए और न ही इस्तकबाल रमज़ान के नाम से रोज़े रखना चाहिए, बल्कि 15 शाबान के बाद तो रोज़े रखने को मना किया गया है। बहरहाल आइए देखते हैं नफली रोज़े की जो फजीलत है उसके बारे में हम देखते हैं। पहले अनबी सईद रदी अल्लाह अन्हु कौल, समयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मन सौम यौमन फ़ी सबीलिल्लाहि बअअद अल्लाह वजहहु अन्निनार 70 खरीफ़ा। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अबू सईद रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसे 70 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नम की आग से दूर कर देंगे। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है और इमाम बुखारी से बाब अल जिहाद, ने जिहाद के बाब में लाए हैं। तो फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद यहाँ पर अक्सर उलमा का ये ख्याल है कि अल्लाह की राह में जब निकला हो कोई बंदा, यानी जहाद करने की गर्ज़ से, और उस सूरत में अगर वो रोज़ा रखता है तो उसके एक दिन के रोज़े का जो उसको बदला मिलेगा कि 70 साल की मुसाफत के बराबर उसको जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उसको लगता है कि जहाद में उसको कमज़ोरी आ जाएगी, ताकत उसके अंदर नहीं रहेगी, तो वो रोज़ा ख़त्म कर दे। लेकिन अगर वो रास्ते में कहीं जाते हुए रोज़ा रख सकता है अल्लाह की राह में, तो उसके लिए इतना ज़्यादा अज्र बताया गया है। अब आप देखें कि फ़ी सबीलिल्लाह आया है, इसको उलमाए किराम ने जहाद भी से नतीजा इसका अख़ज़ किया है या इसके मानी निकाले हैं। और फ़ी सबीलिल्लाह बहुत वसी मानों में इस्तेमाल होता है। अगर हम ये सोचें कि हम अल्लाह की राह में निकले हुए, जैसे कि दीन को सीखना और सिखाना, इसके लिए भी अल्लाह की राह का ही शुमार किया जाता है कि जो लोग दीन की राह में निकलते हैं वो भी अल्लाह के रास्ते में एक तरह से फ़ी सबीलिल्लाह हैं। तो हम चाहें तो ये अजर हम कमा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं कि अगर हम अल्लाह की राह में निकले हों दीन हासिल करने के लिए, या किसी काम के लिए निकले हों, कोई मुहिम दरपेश हो हमको कि हम लोगों के पास दीन की दावत देने जा रहे हों, या बहरहाल एक्स वाई जेड जो भी हम काम करते हों दीन का, अगर उस दौरान में हम रोज़ा रखते हैं और नियत भी हम ये कर लें कि अल्लाह हम तो हैं ही तेरे रास्ते में, और फिर भी हम रोज़ा रख रहे हैं, तो हमें उसका वही अजर दे जो तूने फ़ी सबीलिल्लाह के लिए रखा है। तो उम्मीद है कि अल्लाह सुबहान व तआला हमें भी वो अजर से नवाज दे। और आप सोच रहे हैं कि 70 साल की मुसाफत, सुबहान अल्लाह, यानी एक छोटे छोटे अमल में इतना ज़्यादा अजर हमें बताया गया है कि इंसान के दिल के अंदर तलब और तड़प हो, उसे एक शौक़ पैदा हो कि मैं क्यों ना ये काम करूं, क्योंकि इसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा अजर मिलने वाला है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि, क्योंकि आप देखें अल्लाह सुबहान तआला के ख़जाने कम नहीं हैं, इंसान मांगते मांगते थक जाए लेकिन अल्लाह सुबहान तआला देते देते ना थके, क्योंकि उसके ख़जाने बेहद दो हिसाब हैं। तो चाहे तो वो हमें भी अज्र अता कर सकता है। फिर हर साल के शवाल के 6 रोज़े रखने का सवाब उम्र भर के रोज़े रखने के बराबर है। अनबी अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अनु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सौम रमदान सुम अतबाहु बिसित्ति मिन शवालिन फकअन्नमा सौम अद्दहर। रवाहु मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा। हदीस सही है। अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अनु, अब ये जो अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अनु हैं, बताएँ ये कौन से सहाबी थे? बहुत मशहूर सहाबी हैं और एक ख़ास नस्बत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी। कौन से सहाबी थे ये, क्या ख़ास बात है इनकी? जी ये मेज़बान रसूल कहलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आप इन्हीं के घर पर ठहरे थे। इनके बारे में आपने एक और हदीस भी बयान फरमाई थी। एक और इनके बारे में ख़ास वाक़ा मिलता है कि जब आयशा रदी अल्लाह अन्हा पर इल्ज़ाम लगा था इफ़्क का जो वाक़ा है, उसमें अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हा का किरदार बहुत ही बेहतरीन था। उन्होंने अपनी बीवी से जो उस वक्त की बातचीत हमें मिलती है, एक हमारे लिए इसमें सबक है दरअसल, कि उन्होंने कहा था अपनी बीवी से कि तुम अपने आप को आयशा रदी अल्लाह अन्हा की जगह रख कर देखो और मैं अपने आप को सफ़वान बिन मुअत्तिल रदी अल्लाह अन्हा की जगह रख के देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आयशा रदी अल्लाह अन्हा तुमसे बहुत ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हैं और सफ़वान बिन मुअत्तिल मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम किसी पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते बग़ैर देखे, किसी के बारे में इस तरह से राय कायम नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये सहाबी, इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। तो वो सहाबी रिवायत करते हैं कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रख कर फिर शवाल में भी 6 रोज़े रखे, और ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे हर साल, हदीस में तो नहीं है लेकिन ब्रैकेट में तर्जुमे में दिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर रमज़ान के बाद शवाल के रोज़े रखना, क्योंकि जब भी रमज़ान गुजरे उसके बाद फिर शवाल के रोज़े रखना 6 रोज़े, उम्र भर के रोज़ों का सवाब उससे इंसान पा लेता है। लेकिन वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है कि अगर शवाल के 6 यानी रमज़ान के पूरे रोज़े रखने के बाद अगर इंसान शवाल के 6 रोज़े रखता है तो उसे उम्र भर के रोज़े रखने का अज्र है, या वो हर साल के रमज़ान के बाद और हर साल के शाबान के 6 रोज़े भी रखता है तो फिर उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलेगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है कि किस तरह से ये बात होगी। तो इससे मालूम हुआ कि शवाल के 6 रोज़े रखने का अज्र बहुत ज़्यादा है। तो शवाल के 6 रोज़े और ज़िलहिज्जा की 9 तारीख का रोज़ा रखना ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। मुस्तहब की आपको गालिबन तारीफ़ पहले बताई थी। मुस्तहब उस काम या अमल को कहते हैं जिसके करने पर अज्र बताया गया है, जो पसंदीदा है और ना करने पर कोई गुनाह नहीं है। मुस्तहब वो अमल जिसके करने पर अज्र और पसंदीदगी बताई गई है और ना करने पर कोई गुनाह नहीं है, वो अमल मुस्तहब कहलाता है यानी पसंदीदा। तो सारे साल के रोज़ों की मानिंद इसलिए कहा गया कि क्योंकि एक नेकी का बदला 10 गुना होता है, लिहाजा रमज़ान के रोज़े 10 माह के बराबर हुए और 6 शवाल के 2 माह के बराबर हुए। जैसे कि सोबान रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ईद उल फित्र के बाद 6 रोज़े रखे तो ये पूरे साल के रोज़ों की तरह होंगे, क्योंकि जिसने एक नेकी की उसके लिए उसकी मिसल 10 गुना अजर होगा। सही इब्ने माजा, किताब सियाम। तो अब ये जो शवाल के रोज़े हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं कि हमारे मुआशरे में बहुत सारी बातें मशहूर है कि अच्छा बस ईद का दिन करके दूसरे दिन से रोज़ा रखना शुरू कर देना चाहिए, या फिर कहते हैं कि एक रोज़ा रख के छोड़ दो बाद में रोज़े रख लो, या कुछ लोगों का ख्याल है कि पूरे 6 रोज़े एक साथ रखे जाएँ। तो आप देखें ऐसी कोई भी रिवायत या सहाबे कराम से ऐसा कोई अमल हमें नहीं मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल रोज़े रखने की बात कही हो, बस सिर्फ शव्वाल के रोज़ों की बात है। तो शव्वाल के महीने में आप कभी भी ये रोज़े रख सकते हैं और चाहें तो एक साथ 6 रखें, चाहें तो कभी 2 रखें, चाहें तो कभी 1 रखें, इसमें कोई मज़ायका नहीं। अब देखिए इस्लाम इस तरह की ज़बरदस्ती की पाबंदियाँ इंसान पर नहीं डालता है। हम सब जानते हैं कि ठीक है मर्द हजरात तो फिर भी रख सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या ख़वातीन रख सकती हैं भला? बाज़ोकत ख़वातीन को हैज़ आ जाता है, अब उस सूरत में क्या करेगी, एक रोज़ा उन्होंने रखा होगा शवाल का और फिर वो हालत हैज़ में पाई गई, तो क्या फिर वो शवाल के रोज़े ही ना रखे कि कंटिन्यूएशन उसका नहीं हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है। तो इस तरह की ज़बरदस्ती की पाबंदियाँ या ज़बरदस्ती की हमको इस तरह की बातें नहीं मशहूर करनी चाहिए। बस शवाल के रोज़े रखना है तो शवाल के महीने में आप कोई भी दिनों में आप रखें, चाहे तो तवातुर के साथ रखें, चाहे तो आप उसमें छोड़ पकड़ भी कर सकते हैं, बहरहाल आप लेकिन शवाल का रोज़ा आप देखें इतना जब अजर बताया गया है तो हम कोशिश करें। और आयशा रदी अल्लाहु अन्हा के बारे में आता है, वो खुद कहती हैं कि मैं अगला साल आने से पहले अपने कज़ा रोज़े पूरे कर लेती थी क्योंकि मैं इसकी ताकत नहीं पाती थी। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर जो आपके कज़ा रोज़े हैं, अगर वो कज़ा रोज़े आप बाद में भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, और शवाल के पहले रोज़े रखना चाहें तो रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल जिसे इस्तेतात है या जिसके अंदर इस्तेतात है वो पहले रख ले। ठीक है ना? जैसे कि मुसनद अहमद में आयशा रदी अल्लाह अन्हा का और बुखारी में आयशा रदी अल्लाह अन्हा का ये कॉल मरवी है, मुस्लिम में भी है मौजूद। आयशा रदी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि मेरे ज़िम्मे रमज़ान के रोज़े होते तो मैं माह शाबान के अलावा सारा साल उनकी कज़ा देने की ताकत ना रखती। तो इससे क्या पता चलता है कि वो अगला साल आने से पहले पहले कज़ा रोज़े रख लिया करती थी। तो शौकानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस हदीस में मुतलकन रमज़ान की कज़ा ताखिर से देने का जवाज़ है, क़त नज़र इससे कि वो किसी उज़्र की वजह से हो या बग़ैर किसी उज़्र के। यानी इमाम शौकानी कहते हैं कि इसमें जवाज़ मौजूद है कि आप रमज़ान के कज़ा रोज़े बाद में भी रख सकते हैं, और इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि किसी उज़्र की वजह से आप डिले कर रही हैं या बग़ैर किसी उज़्र की वजह से कर रही हैं। तो बहरहाल इसमें जवाज़ हमें मिलता है। लेकिन कुछ दूसरे स्कॉलर्स हैं जैसे अल्लामा अल्बानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर जिसके अंदर इस्तेतात हो तो वो जल्दी कज़ा दे, क्योंकि हम कुरान में पढ़ते हैं कि वसारिऊ इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम, कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो लिहाजा बहरहाल जिसके अंदर ताकत नहीं है, जैसे इमाम इब्ने हज़म कहते हैं कि इस हदीस से यानी आयशा रदी अल्लाह अन्हा की इस बात से पता चलता है कि जिसके अंदर ताकत नहीं है शवाल के महीने में पूरे पूरे रोज़े रखने की, तो वो धीरे धीरे करके बाद में कभी भी गिनती पूरी कर ले यानी साल भर में, और जिसके अंदर ताकत है वो बेहतर है कि जल्द अज़ जल्द उन रोज़ों को पूरा कर ले। तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करनी है, वहाँ पर ये नहीं फरमाया गया कि पे दर पे रोज़े रखो, बल्कि बस गिनती पूरी करनी कि जितने छूटे हैं कज़ा रोज़े आपके बस उतने आप रख लें, और ये शवाल के रोज़े जो रखना चाहे वो रखें। क्योंकि बाज़ वक़्त हमारे यहाँ अक्सर ये सवाल होता है आता है, यकीन जानिए कि अगर रोज़ों के ताल्लुक़ से अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 9 लोगों का सवाल ये होगा कि अच्छा बाजी हम क्या करें, कि शवाल के रोज़े जो हम रखते हैं तो उसी में हम अपने कज़ा रोज़ों की नियत कर लें। तो आप देखें कि इसके बारे में तमाम स्कॉलर्स का ये फतवा है कि आपके फिर कोई एक रोज़ा होगा आपका, जिसकी आपने नियत की होगी वो रोज़ा होगा, दो दो नियतें करना दुरुस्त नहीं है। कोई एक की जो आप नियत करेंगे उसका रोज़ा होगा, 2 इन 1 यहाँ नहीं चलेगा। और पता नहीं हम क्यों इस तरह से भूल जाते हैं कि भला नेकी का जब मौका मिल रहा है तो हम क्यों इसे छोड़ें। कज़ा रोज़े अपनी जगह है और शवाल के रोज़े अपनी जगह, शवाल के रोज़ों का अजर कुछ और बताया गया है, और अब जो हमारे कज़ा रोज़े छूटे हैं वो तो हम रमज़ान के रोज़े हम रखने वाले हैं, तो उसको हम इसमें मिक्सअप क्यों कर देते हैं। तो बहरहाल शवाल के रोज़े जिसको रखने हैं वो शवाल के रोज़ों की ही नियत करेगा और उसकी नियत से रोज़े रखेगा, और जिसको कज़ा रोज़े रखने हैं वो कज़ा रोज़ों की नियत ही करेगा और फिर कज़ा रोज़े रखेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं माशाल्लाह कि जो शवाल के महीने में ही अपने दोनों रोज़े पूरे कर लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे अल्लाह ताला ताकत दे और हिम्मत दे। तो बहरहाल अगर कोई इस तरह से कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग सवाल ये करते हैं कि अच्छा पहले तो फ़र्ज़ रोज़ों की पूछो कि लिहाजा शवाल के क्यों रखे जाएँ, पहले फ़र्ज़ रोज़े रखे जाएँ। तो जनाब ये बताइए कि अगर बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन को 10 दिन हालत हैज़ में गुज़रते हैं, किसी के 12 दिन होते हैं, किसी के 9 दिन, किसी के 8 दिन होते हैं, अब अगर रमज़ान के बाद अगर वो 1-2 दिन बेचारी अपने मायके जाती हैं और रोज़ा नहीं रखती हैं, और फिर उसके बाद वो रोज़ा रखना शुरू करती हैं, और 12 दिन या 11 दिन उनके पीरियड्स में चले गए, तो अब तो 14-15 दिन तो यही गुजर गए। अब 15 दिन बचे हैं, उसमें अगर जो छूटे हुए रोज़े हैं, कज़ा रोज़े और शवाल के रोज़े, कैसे भला वो बेचारी कर पाएंगी। तो अल्लाह सुबहान तआला किसी पर उसकी इस्तेआत से बढ़कर बोझ नहीं डालते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ रोज़ों की पहले पूछ होगी, आपकी नीयत तो है ना। तो शवाल का महीना अगले महीने तो नहीं आने वाला ना, शवाल का महीना तो बस यही महीना है जो रमज़ान के बाद आ रहा है। अब जब शवाल का महीना गुजर गया तो आप बाकी पूरे साल तो शवाल के रोज़े नहीं रख सकती, तो लिहाजा शवाल की तो आपको इसी महीने में रखने पड़ेंगे, जैसे आयशा रदी अल्लाहु अन्हा किया करती थी कि वो शवाल के महीने में अपने शवाल के रोज़े रख लिया करती और बाद में अगला रमज़ान आने से पहले अपने बाकी बचे हुए रोज़े, कज़ा रोज़े पूरे कर लेती थी। और वैसे भी हम ये जानते हैं कि आयशा रदी अल्लाहु अन्हा कसरत से रोज़े रखने वाली थी। आपको याद होगा वो मशहूर वाक़या कि किसी ने उनके पास दरहम व दीनार से भरी हुई थैली भेजी, तो फौरन सब की सब जो है उसी वक्त उन्होंने वो खैरात कर दी। अब जब अफ्तार का वक्त आया तो उनकी कनीज़ ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन अगर उसी में से कुछ बचा लेती तो हम उसका कुछ ख़रीद लेते, रोटी वग़ैरह। तो कहने लगी कि पहले याद दिलाया होता, अब तो बस जो अल्लाह को मंजूर हो। सुभान अल्लाह, आप देखें कैसा उनका दिल हुआ करता था और कैसे वो लोग थे। और आज तो अफ्तार पर आप देखें हमारे दस्तरखान भरे पड़े होते हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं हमें चूज़ करना मुश्किल हो जाता है, इस कदर फरावानी है। और उन लोगों के पास सिर्फ खजूर हुआ करती थी या बाज़ औक़ात वो भी नहीं होती थी। तो इस्लाम यूं ही नहीं फैल गया, उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सहाबे कराम की, उम्महातुल मोमिनीन की, सबकी कुर्बानियां हैं, तभी आज ये दीन हम तक पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल शवाल के रोज़े रखने का अजर बहुत ज़्यादा है, तो जो कोई हर साल के शवाल के 6 रोज़े रखेगा तो उसको क्या होगा, यानी रमज़ान के रोज़ों के बाद। आप देखें ऐसा ना हो कि अच्छा कोई ये कहे कि अच्छा ठीक है सिर्फ शवाल के 6 रोज़े रख लेता हूँ मैं, मुझे पूरे साल की या पूरी उम्र के रोज़ों का सवाब मिल जाएगा। तो नहीं, इस तरह की बात नहीं है, रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शवाल के रोज़े रखे, क्योंकि पहले फ़र्ज़ रोज़े हैं, तो उस सूरत में फिर उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला हमें उसमें शामिल फरमाए। बाकायदगी से अय्याम 20 यानी चाँद की 13, 14, 15 तारीख, अय्याम 20 मतलब जब चाँद बिल्कुल अपने उरूज पर होता है, समझे बहुत बड़ा सा चाँद होता है, तो उसे अय्याम 20 कहते हैं। तो 13, 14, 15 तारीख के रोज़े रखने से उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलता है। अन अबी क़तादा रदी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासु मिन कुल्ली शहर व रमदानु इला रमदानी फ़हादा सियाम उद्दहरी कुल्ली, रवाहु मुस्लिम। अबू क़तादा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के दरमियानी अरसे में हर माह 3 दिन अय्याम 20 के रोज़े रखना उम्र भर के रोज़े रखने के बराबर है। सुभान अल्लाह, ये मुस्लिम की रिवायत है। तो एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के दरमियानी अरसे में हर माह 3 दिन के रोज़े रखना। अब आप सोचें कि जो ये भी रोज़े रखता है तो उसको उम्र भर के रोज़ों का सवाब है, जो शवाल के रोज़े रखता है उसको भी उम्र भर के रोज़ों का सवाब है। आप देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान तआला तो हम पर इतना मेहरबान है कि वो बस देते ही रहता है, हमको रहमतें बरसाते ही रहता है अपनी, और हमें क्या वो रहमतों को आगे बढ़कर लेना ही नहीं चाहते। तो किस तरह से हर हर काम में, छोटे से अमल में, छोटे से कामों में हमारे लिए कितना ज़्यादा अजर रख दिया गया है, इतना ज़्यादा हमारा रब हम पर मेहरबान है। इसी तरह सफ़र में नफली रोज़ा रखना जायज़ है। अन हमज़ा बिन अम्र अल असलमी रदी अल्लाहु अन्हु अन्नहु सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असुम फ़ि सफ़र क़ाल इन शिअ्त फ़सुम व इन शिअ्त फ़अफ़्तिर, रवाहु नसाई हदीस सही। हज़रत हमज़ा बिन अम्र असलमी रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं सफ़र में रोज़ा रखूँ? आपने इरशाद फरमाया, अगर चाहो तो रखो, चाहो तो ना रखो। तो इससे पता चलता है कि इस्तेआत अगर है, किसी के अंदर इस्तेआत है कि वो सफ़र में भी रोज़ा रख सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और अगर जिसके अंदर इस्तेआत नहीं है तो कोई दूसरे उसे ब्लेम नहीं कर सकते, हम और आप उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते कि अच्छा देखो इतना नेक बनते हैं और रोज़ा भी नहीं रखा सफ़र में, इतना ईजी तो सफ़र था, रखना चाहे तो रख सकते थे। तो हमें इस तरह के कॉमेंट्स पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, चाहे तो रखो चाहे तो ना रखो। جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا وہ حدیث۔ پھر اسی طرح سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، یعنی منڈے اور تھرسڈے۔ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغرد الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یورد عملی وانا صائم، رواہ الترمذی، حدیث صحیح۔ ابو حریرہ راوی یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ہے۔ اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ منڈے اور تھرسڈے انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں، تو اب بہتر ہے کہ انسان اس وقت پھر کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں ہو، روزے سے ہوں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اب اگر دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات قطع کیے ہوئے ہوں، یعنی آپس میں رشتوں کو توڑ دیا ہو، بات بند ہے، تو آپ بتائیے کہ کیسے ان کے نیک عمل وہاں پر پہنچ سکیں گے پھر، یا کیا ان کی رپورٹ لکھی جائے گی ان کے عمل نامے کی۔ تو اسی بنا پر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مومن بھائی سے ناراض رہے یا 3 دن سے بڑھ کر بات بند کر دے۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا ایک روزہ، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ، یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے، یعنی جو 1 سال پیچھے گزر گیا اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفت احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعدہ وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، رواہ مسلم۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال، یعنی 1 سال پچھلا ہوا اور ایک آنے والا سال، اس کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں پچھلے 1 سال کے گناہ جو گزر گیا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ مسلم کی روایت ہے۔ کتنا آپ دیکھیں کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو دین پر صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے، جو نوافل کی پابندی کرتا ہے، اس کے لیے تو پھر سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی پھر اس کو ضرور ملے گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہر کام میں، ہر عمل میں، چھوٹے سے عمل میں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں ہمارے لیے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر، پڑھ کر بھی، اب اگر ہم اپنے گناہ معاف نہ کروا سکیں تو آپ بتائیے کہ ہمارے جیسا یا ہم سے بڑھ کر کوئی نادان اور بے وقوف ہوگا؟ نہیں نا، کیونکہ ہمارے سامنے اتنی اپارچونیٹیز، اتنے آپشنز اویلیبل تھے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے اعمال نامے سے ان گناہوں کو ڈیلیٹ نہ کروا سکے، تو پھر آپ بتائیے بھلا کہ کیا چیز ہمیں جگائے گی؟ تو ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے الرٹ رہ کر، جس میں نیکیاں ہوں، فرائض کی پابندی ہوں، اور نوافل کا بھی اہتمام ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ نفل روزہ ہو، چاہے وہ نفل صدقات ہوں۔ تو ان سارے نیک کاموں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں ہمیں وہ بلند درجات مل سکیں جنت کے، آمین۔ اسی طرح سے صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چونکہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا ان کی مخالفت کرو، 9 یعنی ان کی مخالفت کرو، 2 روزے رکھو، یعنی اس کے ساتھ بھی 1 روزہ رکھ لو۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں رہا اگلے سال تک تو ہم 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھیں گے، یعنی حدیث میں 9 اور 10 کا ذکر آتا ہے، تو بہتر، مستحب، پسندیدہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھیں، اور اگر کوئی کسی کا چھوٹ گیا ہو 9 کا روزہ، تو پھر وہ اس صورت میں کیا کرے، 10 کے ساتھ 11 کا بھی ملا لے، لیکن 1 روزہ نہ رکھے، یہ مکروہ کہلائے گا، یعنی ناپسندیدہ۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، وہ کام جو کہ ناپسندیدہ ہو اور اس کو کرنے سے منع کیا گیا ہو، اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر پکڑ ہو جائے، تو ایسے کام کو مکروہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے، جس سے کراہت दिलाई गई है। लेकिन अब बाज़ वक़्त कुछ लोग सवालत करते हैं कि अच्छा बाजी, हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, अगर हम दो रोज़े रखाते हैं तो चूंकि उनके स्कूल भी है तो क्या हम सिर्फ़ एक रोज़ा रखवाएं? तो इसके बारे में स्कॉलर्स का ये कहना है, खुसूसन यहाँ के स्कॉलर्स का कहना ये है कि जी बिल्कुल, अगर ऐसे ही ऐसी बात है, ऐसी सिचुएशन है कि बच्चे हैं और वो रखना भी चाह रहे हैं ताकि उनको नफिल रोज़ों की आदत हो, तो उस सूरत में आप उनसे एक रोज़ा रखवा सकते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होंगे और जिनके अंदर इस्तेआत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि एक रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है, लिहाजा वो एक नहीं रखेंगे बल्कि क्या रखेंगे, एक के साथ उसको यानी 10 के साथ कौन सा रोज़ा मिलाएंगे, 9 तारीख का भी मिलाएंगे, ठीक है ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बाकी सब महीनों से ज़्यादा रोज़े रखते थे। लीजिए जनाब, अब आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात सुना दी, हम तो सुनते आए हैं कि सबसे ज़्यादा रोज़े रजब में रखा करते थे और सबसे ज़्यादा पसंदीदा महीना रजब का महीना था, तो ये कौन सी नई बात आ गई? तो रजब वाली जितनी भी अहादीस हैं सब की सब मनगढ़ंत हैं या इंतहाई ज़ईफ़ हैं, झूठी अहादीस हैं। और फिर वही वाली बात आती है कि झूठी अहादीस को ना हमें तरवीज उसकी करनी चाहिए, ना इशाअत करनी चाहिए, ना किसी से बयान करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद सुनाई है कि मन कदीब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबवा मक़दहु मिनन नार, कि जिसने मेरी जानिब जानबूझ कर झूठ घड़ा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो लिहाजा रजब के महीने वाली अहादीस ज़्यादातर मनघड़त हैं, फैब्रिकेटेड हैं, उसे ना लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ज़्यादा रोज़े रखते थे और आपने यानी स्कॉलर्स भी ये बात कहते हैं कि 15 शाबान के बाद जो है रोज़े रखना बेहतर है, छोड़ दिए जाएँ, क्योंकि रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े की ताकत के लिए, कि इंसान के अंदर ताकत रहे। अन आयशा रदी अल्लाहु अन्हा अन्हा क़ालत मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमल सियाम शहरिन इल्ला रमदान व मा रअयतु फी शहरिन अक्सर मिन्हु सियामन फी शाबान। मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है ये, यानी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक। आयशा रदी अल्लाहु अन्हा कहती है मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी महीने के पूरे रोज़े रखते नहीं देखा, ना ही शाबान के अलावा किसी दूसरे महीने में कसरत से रोज़े रखते देखा। इससे फिर क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के तो रोज़े रखते ही थे, यानी पूरे रोज़े रखते थे रमज़ान के, और उसके अलावा किसी महीने में अगर कसरत से रोज़े रखते तो फिर वो कौन सा महीना होता था? शाबान का। 15 शाबान को ख़ास तौर पर रोज़ा रखने की तमाम अहादीस गैर मोतबर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ सही है अहादीस से साबित है वो ये है कि इस महीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखते थे। जी हाँ, अच्छी बात याद आई ये भी कि 15 शाबान को हमारे यहाँ कौन सी रात मनाई जाती है? शबे बरात गालिबन। तो देखिए, शबे बरात तो ये लफ्ज़ ही एक्चुअली देखा जाए तो फ़ारसी का लफ्ज़ है ये, और इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है शबे बरात की रातों को जगह किया जाए, मीठा बनाया जाए, ज़रदा पुलाव बनाया जाए, चिरागा किया जाए और सारे नौजवान घूमते फिरते हैं। मस्जिद में जाने का तो किसी को शौक़ नहीं होता, बस सिर्फ घूम रहे हैं, हंसी मजाक, चाय और पान की दुकानें खुली हुई हैं। तो 15 शाबान की रात को कोई हमें शब बरात का सही हदीस से कोई ज़िक्र नहीं मिलता है, और हमें जो रात का ज़िक्र मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र के अलावा कोई भी रात के बारे में नहीं कहा गया कि जिसके लिए एहतमाम किया जाए। हाँ, अगर किसी की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि रोज़ाना वो तहज्जुद पढ़ता है रोज़ रात में, तो वह ज़रूर पढ़े उस दिन भी, लेकिन स्पेशली उस रात जाकर इबादत करना यह बिदअत में शुमार होगा। नफली रोज़े रखने में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोज़ा रखने का तरीका सबसे अफजल है। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रदी अल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सुम फ़ी कुल्ली शहरिन सलासत अय्याम क़ुल्तु इन्नी अक्वा मिन ज़ालिका फ़लम यज़ल यरफ़ानी हत्ता क़ाल सुम यौमन व अफ़्तिर यौमन फ़इन्नहु अफ़दलु सियाम वह सौम अख़ी दाऊद अलैहिस्सलाम। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अब्दुल्लाह बिन अम्र रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर माह 3 दिन के रोज़े रखो। मैंने अर्ज़ किया, मुझ में से ज़्यादा ताकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर मुझसे रोज़े कम कराते रहे, हती कि आपने फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन तर्क करो, ये अफजल तरीन रोज़े हैं। मेरे भाई दाऊद अलैहिस्सलाम का यही तरीका था, ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। और ये अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु, ये बहुत मशहूर सहाबी हैं, अपने वालिद से पहले ईमान लाए माशाल्लाह, और उनसे पहले हिजरत की, बहुत ज़्यादा नेक मुत्तकी और परहेज़गार थे, तकवा वाले थे, मुसलसल बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे और बहुत ज़्यादा कुरान की तिलावत किया करते थे। यही वो सहाबी थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत जल्दी कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल करने की इजाज़त चाही। तो आपने फरमाया कि नहीं, आप उनसे कहते रहे कि इतने दिन में पढ़ो, तो उन्होंने कहा कि ये भी बहुत है अल्लाह के रसूल, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। फिर आप करवाते गए करवाते गए, यहाँ तक कि आपने फरमाया कि ठीक है, 3 दिन से ज़्यादा में, यानी 3 दिन से पहले कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल ना करो, कम से कम अगर करना चाहो तो 3 दिन। तो ये सहाबी बहुत ज़्यादा कसरत से तिलावत करने वाले थे और कसरत से रोज़े रखने वाले थे। तो आपने उनको कहा कि इतने रोज़े ना रखो, बल्कि क्या करो, महीने के 3 रोज़े रख लिया करो। या फिर उन्होंने कहा कि मुझे इससे भी ज़्यादा मेरे अंदर ताकत है, तो आप बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे। फिर यहाँ तक कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इससे भी ज़्यादा ताकत रखता हूँ। तो आपने फिर ये फरमाया कि अच्छा ठीक है, 1 दिन रोज़ा रखो, 1 दिन ना रखो, और ये सबसे अफजल रोज़ा है। और कौन इस पर अमल करता था? सुभान अल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम। सोचें ज़रा, इतने बड़े बादशाह, अल्लाह सुभान तआला ने इतनी सारी नेमतों से उनको नवाजा, फिर नबी भी थे, बादशाह भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए अल्लाह सुभान तआला की बंदगी में कितना आगे, फरमाबरदारी में कितने आगे। तो ये अल्लाह ताला के नेक बंदों की सिफत हुआ करती है। तो बहरहाल ये जो सहाबी थे अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु, ये भी बहुत मशहूर सहाबी गुजरे हैं। यही वो सहाबी थे जिन्होंने पहला हदीस का नुस्खा लिखा, जिसका नाम सहीफ़ सादिका था, और अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने उसकी तस्दीक करवाई। और पहला रिटन नुस्खा जो अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में मौजूद था, वो इन्हीं का नुस्खा था। वैसे और बहुत सारे सहाबे कराम ने लिखे, लेकिन बाकायदा लिखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अप्रूव करवाना, ये इन्होंने ही किया था। इसी तरह मुहर्रम के महीने में रोज़े रखना, उसका क्या दर्जा है और क्या फजीलत आती है, वो हम देख लेते हैं। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के रोज़े हैं, जो अल्लाह का महीना है, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज़ है। ये भी मुस्लिम की हदीस है। इसमें भी क्या बताया गया है कि सबसे अफजल रोज़े कौन से हैं? मुहर्रम के हैं। बाज़ रिवायत से ये पता चलता है, या बाज़ मुफस्सरीन या तफसीर निगार या फिर सीरत निगार ये कहते हैं कि रमज़ान के रोज़े आने से पहले दरअसल मुहर्रम का रोज़ा ही फ़र्ज़ था, जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो फिर वो मुहर्रम का रोज़ा नफिल बन गया, वरना अदरवाइज़ वही रोज़ा फ़र्ज़ था। तो इस बिना पर सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है, और उसमें भी 2 रोज़े हैं, 9 10 का रखना है 2 रोज़े, और अगर किसी से 9 का नहीं हो सके तो 10 11 का रख ले। और इसी तरह से नमाज़ों में फ़र्ज़ के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। पीर के दिन का रोज़ा, अन अबी क़तादा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम अल-इस्नैन फ़क़ाल फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया रवाहु मुस्लिम। अबू क़तादा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के रोज़े के बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन मैं पैदा किया गया और उसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो इससे फिर क्या पता चलता है कि ये जो नफली रोज़े हमने पढ़े मुहर्रम के हैं, ये शवाल के हैं, तो ये रोज़े बहुत अफजल रोज़े हैं, क्योंकि इसका अजर बहुत ज़्यादा बताया गया है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन्हें रखने की तौफीक अता फ़रमाएँ और हम इनकी पाबंदी करने वाले बने, ताकि आखरत में इसके बदले हमें बेहतरीन अजर व सवाब अल्लाह सुब्हान तआला अता फ़रमाएँ। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।